अन्य वृक्षों में नीम, खजूर, बबूल आदि का भी अंकन प्राप्त होता है। संभव है इनका भी कोई न कोई धार्मिक महत्व रहा हो। इसके अतिरिक्त वे जल, स्वास्तिक तथा चक्र को भी पवित्र मानते थे। एक चित्रित मिट्टी के बर्तन पर किसी बैठे हुए देवता का चित्र बना हुआ है, जिसके एक तरफ पुजारी तथा सिर के ऊपर नाग का चित्र है। मिट्टी के बर्तनों पर सर्प के कुछ चित्रण मिलते हैं। लोथल से मिले हुए तीन बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृतियां बनी हुई हैं। इससे नाग पूजा का भी कुछ संकेत मिलता है। उनकी मुद्राओं पर स्वास्तिक आदि पवित्र चिन्ह भी मिलते हैं। कुछ विद्वान इनका संबंध सूर्य उपासना से बांधते हैं। एक मुद्रा पर एक सिंगी पशु के सामने सूर्य जैसी आकृति बनी हुई है। अनेक ताबीजें भी प्राप्त होती हैं। संभवतः प्रत्येक सैंधव नागरिक मुद्रा को ताबीज के रूप में धारण करता था। ताबीजों पर तरह तरह के चित्र खुदे हुए हैं, जिनका महत्व धार्मिक रहा होगा। लोथल तथा कालीबंगन के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी वेदी मिली है। साथ ही पशुओं, बैल या गाय की जली हड्डियां, मन के चित्रित मृदभांड के टुकड़े तथा राख मिलती हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ के निवासी पशु बलि देते थे। कालीबंगन में एक कुएं के समीप सात आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्निवेदियां मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक जीवन में वेदियों का भी महत्व था। शव के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण आदि मिलने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि लोग पारलौकिक जीवन में भी आस्था रखते थे। इस प्रकार सैंधव धर्म में माता देवी तथा पुरुष देवता की उपासना के साथ हम अनेक पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, मांगलिक प्रतीकों आदि की पूजा का विधान पाते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार कालांतर में हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वास भी सैंधव सभ्यता में पाए जाते हैं, और इस प्रकार हिंदू धर्म में अनेक प्रमुख तत्वों का आदि रूप में हमें सिंधु सभ्यता में ही मिल पाता है। कला तथा स्थापत्य। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत हमें कला का सुविकसित स्वरूप देखने को मिलता है। इस सभ्यता के शासक तथा समृद्ध व्यापारी कला के प्रेमी थे तथा उन्होंने इसके विकास को पर्याप्त योगदान दिया। इस सभ्यता में हमें वास्तुकला, मूर्तिकला, उत्कीर्ण कला या रिलीफ स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि के सम्यक रूप से उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ के नगर तथा भवन हैं, जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। मूर्तिकला। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मूर्तिकला का सम्यक विकास हुआ। यहाँ के नगरों की खुदाई में प्रस्तर धातु तथा मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियाँ यद्यपि कम हैं, तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। सुने, पाषाण या प्रस्तर मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से लगभग एक दर्जन पाषाण मूर्तियाँ तथा हड़प्पा से दो पाषाण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हैं। इनका निर्माण सेलखड़ी, एल्बेस्टर, चूना प्रस्तर, बलुआ प्रस्तर, स्लेटी प्रस्तर आदि की सहायता से किया गया है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। यह सेलखड़ी पत्थर की बनी लगभग 19 सेमी ऊंची है। योगी के मूछें नहीं हैं, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। इसके केस पीछे की ओर एक फीते से बांधे गए हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है तथा यह बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाली साल ओढ़े हुए है। योगी के नेत्र अध खुले, उसके निचले होठ मोटे हैं तथा उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ है। गर्दन कुछ अधिक मोटी है तथा मुंह की गोलाई बड़ी है। मैके का विचार है कि कलाकार ने इस मूर्ति के माध्यम से किसी विशिष्ट व्यक्ति का यथार्थ रूपांकन किया है। वे इसे पुजारी की मूर्ति बताते हैं। चंदा के अनुसार यह योगी की मूर्ति है। इस मूर्ति के केश विन्यास विशेष रूप से आकर्षक हैं। इस प्रकार की कुछ मूर्तियां मिस्र, क्रीट तथा मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं में भी मिलती हैं, जहाँ उनका संबंध देवताओं से था। अतः मोहनजोदड़ो की इस मूर्ति का अवश्य ही कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ऐसा लगता है कि सैंधव सभ्यता में योग विद्या का जो प्रचार था, उसी का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मूर्ति में किया प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य प्रस्तर मूर्तियां भी मिलती हैं। एक श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक लगभग 7 इंच ऊंचा है, जो वह मिला है। यह दाढ़ी युक्त है तथा मूछें साफ हैं, पीछे की ओर जुड़ा बंधा हुआ है। छोटे कटे बाल हैं, नाक कान सीपी जैसे हैं तथा आँखों में पच्चीदार पुतली है। इसमें पहली मूर्ति जैसी कारीगरी नहीं मिलती। इसी प्रकार 11 इंच ऊंची पत्थर की बनी हुई पुरुष मूर्ति का अधोभाग प्राप्त होता है। यह नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है तथा ऊपर बाएं कंधे पर साल जैसा उत्तरीय ओढ़े हुए है। इसकी पीठ पर गुथे हुए बालों की जुड़ा है। यह मूर्ति साधारण ढंग से बनाई गई लगती है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य पाषाण निर्मित पश मूर्तियाँ भी मिलती हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय श्वेत पाषाण निर्मित लगभग 10 इंच ऊंची एक संयुक्त पश मूर्ति है, जिसमें शरीर भेड़े का तथा मस्तक सूरधार हाथी का है। संभवतः इस मूर्ति का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। सैंधव मोहरों पर भी इसी प्रकार की संयुक्त पश आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की तथा दूसरी काले पत्थर की बनी है। दोनों ही मूर्तियों के मस्तक तथा पैर टूटे हुए हैं। पहली मूर्ति किसी सीधे खड़े हुए पुरुष की है। इसकी गर्दन के ऊपर कंधों के निचले भागों तथा जंघों के नीचे छेद बने हुए हैं, जो किसी बर्मे द्वारा उकेरे हुए लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के विविध अंगों जैसे मस्तक, हाथ, पैर आदि को अलग अलग बनाकर किसी मसाले द्वारा जोड़ने की प्रथा उस काल में प्रचलित थी। दुर्भाग्यवश बाद में इस कला का विलोप हो गया। इस नग्न प्रतिमा को कुछ विद्वान कोई जैन मूर्ति मानते हैं। दूसरी मूर्ति के हाथ पैर टूटे हुए हैं। विद्वानों ने इसे किसी नर्तक अथवा नर्तकी की मूर्ति बताया है। इन दोनों की मूर्तियों के शरीर सौष्ठव को कलाकार ने अत्यंत कुशलता के साथ उभारा है। इनका गठन अत्यंत सजीव एवं प्रभावशाली है। जिन्हें देखने से ऐतिहासिक युग की दीदारगंज यक्षिणी जैसे कुछ मूर्तियों का आभास होने लगता है। यूनानी कलाकारों ने गंधार की बुद्ध मूर्तियों के निर्माण में जो यथार्थता दिखाई है, वही इन मूर्तियों में भी देखी जा सकती है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत मार्शल ने यह मत व्यक्त किया है कि ईसा पूर्व चतुर्थ शती का कोई भी यूनानी कलाकार ऐसी मूर्तियाँ तैयार करने में गर्व का अनुभव करता। इन मूर्तियों से यह धारणा भी निर्मूल सिद्ध होती है कि केवल यूनानी कलाकार ही मानव शरीर के आधार चित्रण में निपुण थे। इनसे सूचित होता है कि हड़प्पा के शिल्पी उच्च कोटि की स्वाभाविक प्रतिमाओं का निर्माण कर सकते थे। धातु मूर्तियां पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगन आदि स्थलों से धातु मूर्तियां मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कान से मूर्ति है। यह सुंदर एवं भावयुक्त है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तथा पैरों का निचला हिस्सा टूट गया है। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा नीचे की ओर लटक रहा है। दाएं हाथ में वह कंगन तथा केऊर पहने हुए है और वह कमर पर टिका हुआ है। उसके घुंघराले बाल पीछे की ओर जुड़ा में बंधे हुए हैं। गले में छोटा हार तथा कमर में मेखला है। नर्तकी के पैर जो थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, संगीत की लय के साथ उठते हुए जान पड़ते हैं। अपनी मुद्रा की सरलता एवं स्वाभाविकता के कारण यह मूर्ति सबको आश्चर्यचकित करती है। मार्शल के अनुसार इस मूर्ति के माध्यम से कलाकार ने किसी आदिवासी स्त्री का यथार्थ रूपांकन करने का प्रयास किया है। इस नृत्यरत स्त्री की स्वाभाविक मुद्रा के अंकन में उसे अपूर्व सफलता मिली है। पिगट इसकी तुलना कुल्ली से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों से करते हुए इसे बलूचिनारी का अनुकृत मानते हैं। इसके अतिरिक्त यहीं से कांसे की एक अन्य नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, किंतु यह कलात्मक दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं है। यहीं से तांबे की दो अन्य मानव मूर्तियां मिलती हैं। पहली कमर पर हाथ रखे हुए तथा दूसरी हाथ ऊपर उठाए हुए है। मानव मूर्तियों के साथ साथ मोहनजोदड़ो से भैंसा तथा भेड़ा की कांस्य मूर्तियां भी मिलती हैं। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से प्राप्त वृषभ की ताम्र मूर्तियां भी कलात्मक दृष्टि से अच्छी हैं। धातु से बनी इन मूर्तियों में पशुओं की स्वाभाविक विशेषताओं को उभारने में कलाकार को सफलता मिली है। इन धातु मूर्तियों में ढलाई की जिस विधि का प्रयोग किया गया है, उसे हमारे प्राचीन साहित्य में मधुचिष्ट विधि या लॉस्ट वैक्स कहा गया है। इसे कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति तथा सुल्तानगंज की बुद्ध की ताम्र मूर्ति का निर्माण किया गया। मृण मूर्तियां या मिट्टी की मूर्तियां। सैंधव मूर्ति कला के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। केवल कुछ को छोड़कर से सभी हस्तनिर्मित हैं। ये मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। मोहनजोदड़ो से जो पुरुष मूर्तियां मिली हैं उनमें लंबी नाक, साफ ठोड़ी, पीछे की ओर ढलुआ माथा, लंबी कटावदार आंखें, चिपकाया हुआ मुख आदि मिलता है। कुछ को छोड़कर बाकी सब नग्न हैं। वत्स ने हड़प्पा से एक ऐसी पुरुष मूर्ति प्राप्त किया है जो लुंगी पहने हुए है। पुरुष मूर्तियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। इनकी साधारण गढ़न से सूचित होता है कि निर्माता कलाकार की इनमें कोई खास रुचि नहीं थी। नारी मूर्तियां अपेक्षाकृत सुंदर तथा प्रभाव उत्पादक थी। इन्हें गहनों से लादा गया है। इनके मस्तक पर पंखे के समान फैला हुआ आभरण, कानों में गोलाकार कुंडल, गले कंठा, छाती पर कई लड़ियों वाला हार, कमर में मेखला तथा भुजाओं में भुजबंद प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी कमर में घुटनों तक का लंबा परिधान है तथा निचला भाग नग्न है। इनकी आंखें, स्तन, आभूषण आदि अलग से चिपकाए गए हैं। नौसारों तथा मेहरगढ़ से कुछ ऐसी नारी मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। बीबी लाल इसे सिंदूर बताते हैं। स्पष्ट है कि मूर्ति के अलंकरण पर कलाकार ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विद्वानों ने इन नारी मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां बताया है जो सैंधव धर्म की सर्व प्रमुख देवता थी। कुछ मूर्तियों में उनकी गोद में कभी कभी एक बच्चा भी दिखाया गया है जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति के योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह भी मातृत्व का प्रतीक है। माता देवी के अतिरिक्त कुछ सामान्य नारी मूर्तियां भी मिलती हैं जिन्हें आटा गूंथते अथवा रोटी लिए हुए दिखाया गया है। नारी मूर्तियों की प्रचुरता से स्पष्ट है कि सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन में मातृका पूजन का विशेष महत्व था। कालांतर में इसी को भारतीय परंपरा में शक्ति देवी, मातृभूमि, ग्राम देवता आदि रूपों में मान्यता दी गई। सैंधव नारी मूर्तियां देवी के कल्याणकारिणी स्वरूप के सूचक हैं। कुल्ली से प्राप्त कुछ मूर्तियों का मुखमंडल भयंकर स्वरूप वाला है। इन्हें देवी के रौद्र रूप का द्योतक माना जा सकता है जिसे बाद में चंडिका, काली, भैरवी आदि नाम से जाना गया। मोहनजोदड़ो से बालकों की कुछ मूर्तियां मिली हैं। ये आभूषण पहने हुए हैं तथा इन्हें घुटनों के सहारे चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। मायके के अनुसार इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। मानव मूर्तियों में कहीं अधिक संख्या में पशुओं की मूर्तियां सैंधव स्थलों से प्राप्त की गई हैं तथा वे कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की हैं। इसमें कुबड़दार वृषभ विशेष रूप से पाया जाता है। अन्य पशुओं में हाथी, गैंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा, भेड़ा आदि की मूर्तियां काफ़ी संख्या में मिलती हैं। गिलहरी तथा सर्प की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न पक्षियों जैसे मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लू आदि की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से मछली, कछुआ तथा घड़ियाल की मूर्तियां मिलती हैं। एक काल्पनिक पशु की गर्दन से दो सिर निकलते हुए चित्रित किए गए हैं। संभवतः इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। लोथल से मिली एक मूर्ति मानव धर तथा पशु का सिर है। यहाँ से एक गोरिल्ला की मूर्ति मिली है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के स्थलों से गाय की मूर्ति तो नहीं मिलती, किंतु राव ने लोथल से गाय की दो मूर्तियों को प्राप्त करने का दावा किया है। लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि से घोड़े की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियों में 3/4 पशुओं की हैं। इनमें वृषभ की आकृतियाँ अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त छोटे सिंह वाले वृषभ की आकृति कलात्मक दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट है कि मार्शल इसके निर्माता को महान कलाकार कहते हैं। कालीबंगन से प्राप्त एक वृषभ की सुंदर आकृति को आक्रामक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। पक्षियों को बैठे हुए, चोंच खोले हुए एवं उड़ते हुए दिखाया गया है। सैंधव कुमार एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी फायंस को गूंथ कर मसाला तैयार करते थे जिसकी सहायता से खिलौने, गहने, कड़े कंगन, ताबीज, बटन, अंगूठी, गोलियां, बटखरे आदि बनाए जाते थे। यह कांचली मिट्टी क्वार्जाइट नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। इसके कांच का चूर्ण मिलाकर आग में पकाया जाता था जिससे इसका रंग कच्चे शीशे जैसा कांचला हो जाता था। इस प्रकार की मिट्टी से बनी हुई कुछ विशेष मूर्तियां जैसे अनाज के दाने, कुतरती हुई गिलहरी, एक दबका हुआ मेढक तथा लिपट कर बैठे हुए वानर आदि उल्लेखनीय है। कांचली मिट्टी की वस्तुएं मेसोपोटामिया, सीरिया, पश्चिमी एशिया, मिस्र आदि से भी मिलती हैं। मुद्राएं सैंधव कला के अंतर्गत मुद्राओं अथवा मुहरों सील्स का विशिष्ट स्थान है, जिनमें हमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। विभिन्न पुरास्थलों में अब तक 2000 से भी अधिक मुहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। सबसे अधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी की आदि की बनी हुई मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ गोलाकार, घनाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। मुहरों के पीछे छेद कर एक घुंडी लगाई जाती थी, जिसमें धागा डालकर उन्हें काम में लाया जाता था। मुहरे सामान्यतः 2.8x2.8 सेमी आकार की हैं। कुछ कलात्मक दृष्टि से अत्युत्कृष्ट हैं तथा विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती हैं। मुहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि की कलाकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। इनमें एक सिंह वाले पशु, वृषभ, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश आदि पशु हैं। एक सिंह वृक्ष का अंकन बहुतायत में मिलता है। छोटे सिंह वाले बैल या नटुआ बैल का अंकन भी काफी लोकप्रिय था। एक मुहर पर अंकित वृषभ की आकृति अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसमें उसे ढूंसा मारने की मुद्रा में दिखाया गया है। उसकी फैली हुई सींगों, झूलते हुए गलकंबल, लोटती हुई टांट या खोपड़ी, तने हुए मांसपेशियों के लेवड़े आदि आज भी अद्भुत प्रतीत होते हैं। कुछ परमानव तथा पश की मिश्रित आकृतियां मिलती हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोतल की एक मुहर पर नाव का चित्र मिलता है। एक मुहर पर खुदे हुए चित्र में दो भागों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि बेबीलोनिया की कला में भी इस प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, जिसे एनकिडू तथा गिलगमेश को क्रमशः सिंह एवं सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है। संभव है यह चित्रांकन बेबीलोनियन संपर्क का परिणाम रहा हो। पशुपति शिव की एक मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें त्रिमुखी शिव को एक चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ मुहरों पर स्वास्तिक, पीपल के वृक्ष आदि के चित्र खुदे हुए हैं। मुहरों के अतिरिक्त सैंधव नगरों की खुदाई में अनेक मनके भी प्राप्त हुए हैं, जो सेल खड़ी, गोमेद, कांचली मिट्टी, शंख, सेप, हाथी दांत, सोना, चांदी, तांबा आदि से बने हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से कुछ तांबे की बनी पट्टिकाएं या टैबलेट भी मिलती हैं, जिन पर मुहरों से मिलते जुलते चित्र पाए जाते हैं। छापे मिट्टी, कांचली मिट्टी, पेस्ट आदि से बनाई गई हैं तथा उनके ऊपर मनुष्यों, पशुओं के चित्र अथवा लेख खुदे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिले एक मुद्रा छाप के अग्रभाग में 6 मानव आकृतियां एक पंक्ति में बनी है। नीचे हाथ में हसिया लिए एक झुकी हुई आकृति है। उसके सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरा है। स्पष्टतः यह देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दिए जाने का अंकन है। एक दूसरे मुद्रा छाप में एक योगी की मूर्ति के दोनों ओर एक एक भक्त तथा पीछे नाग दिखाए गए हैं। कुछ मुद्रा छापों पर हाथी, गैंडा, मछली, हिरण, विष आदि की आकृतियां मिलती हैं। ताम्रपत्र लंबे, वर्गाकार तथा आयताकार हैं। मोहरों के विपरीत इन पर पशु आकृतियों को दाहिनी ओर मुंह किए हुए दिखाया गया है। मार्शल उन्हें ताबीज मानते हैं, जबकि वीएस अग्रवाल इन्हें ताम्र मुद्राएं माना है, जिनका प्रयोग सिक्कों की भांति किया जाता था। मृदभांड सैंधव सभ्यता में मृदभांड कला का भी अच्छा विकास हुआ। खुदाई में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा उनके बहुसंख्यक टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन चाक तथा हाथ दोनों से बने हैं। चाक पर बनाए गए बर्तनों की अधिकता है। हस्तनिर्मित बर्तन अपेक्षाकृत काफी कम मिले हैं। सैंधव कुंभकार का दृष्टिकोण उपयोगितावादी था तथा उसने दैनिक उपयोग के बर्तनों का ही निर्माण किया। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। बर्तन भट्ठों से भली भांत पकाए जाते थे। खुदाई में भट्ठों के अवशेष मिलते हैं। ये वृत्ताकार हैं तथा इनका व्यास 1.8 मीटर से लेकर 2.74 मीटर तक मिलता है। इनकी तली में गड्ढा तथा ऊपर धुआं बाहर निकलने के लिए गुंबद बनाया गया है। बर्तनों में अनाज रखने के बड़े कोठिले, पानी के गढ़े, सुराही, मर्तबान, कटोरे, प्याले, तस्तरियां, कुल्हड़, थालियां, नादे आदि सभी मिलती हैं। अधिकांश बर्तनों पर कोई चित्रण नहीं मिलता। चित्रण वाले बर्तनों की संख्या कम है तथा जो मिले हैं उनमें भी अधिकांश टूटे फूटे हैं। कुछ बर्तनों पर विविध पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों जैसे बकरा, हिरण, मोर, मछली, कछुआ, गाय, बछड़ा, मुर्गा, पीपल, खजूर, नीम, केला आदि का अंकन सुंदरता पूर्वक किया गया है। एक चित्र में कोई मछुआ अपने कंधों पर दो जालों की भंगी उठाए हुए चल रहा है। बर्तन के एक टुकड़े पर मृगया का चित्र है जिससे दाईं ओर शिकारी मृग का शिकार करते हुए तथा बाईं ओर कुत्ते को हिरण का पीछा करते हुए चित्रित किए गए हैं। कुछ बर्तनों पर ठप्पे लगे हुए हैं जिनमें सैंधव लिपि के कुछ अक्षर हो सकते हैं। कब्रिस्तानों से जो सौ पात्र मिले हैं उनमें कुल्हड़, प्याले, थालियां, ढक्कन आदि हैं। सामान्यतः इन पर मोर का अंकन है। इसके अतिरिक्त तारागण, लहरदार रेखाएं, त्रिभुज, मछली, उड़ते हुए पक्षी आदि भी चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार सैंधव मृदभांड विविध अलंकरणों की दृष्टि से काफी समृद्ध है तथा उनके निर्माण की तकनीक अत्यंत विकसित है। इनसे सैंधव सभ्यता की अलग पहचान भी बनती है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार मृदभांड उसे दूसरी सभ्यताओं से जोड़ने के बजाय एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करने में सहायक हैं। आभूषण। इन कलाकृतियों के अतिरिक्त सैंधव सभ्यता के स्थलों से विभिन्न प्रकार के आभूषण भी मिले हैं। ये सोने, चांदी, मिट्टी, पत्थर आदि के हैं। ये जौहरियों की कला के विकसित होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आभूषणों के ढेर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सोने चांदी की अधिकता थी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, अतः जौहरियों ने सभी के उपयोग के लिए आभूषण तैयार किए। प्रमुख आभूषणों में भोजबंद, हार, करधनी, अंगूठिया, कर्णफूल आदि हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि से भी आभूषण तैयार किए जाते थे। चांदोधड़ों से मनकों के निर्माण का एक कारखाना भी प्राप्त हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि सैंधव कला भारतीय कला के इतिहास में किसी प्रारंभिक नहीं अपितु विकसित अवस्था को व्यक्त करती है। यहाँ के विविध स्थलों से प्राप्त छोटी से छोटी कलाकृतियाँ उच्च कोटि के तकनीक एवं सौंदर्य भावना को प्रकट करती हैं। मानव रूप की आदर्श परक अभिव्यक्ति तथा पशुओं का स्वाभाविक निरूपण हम सैंधव कला में ही प्राप्त करते हैं। नर्तकी की ताम्र मूर्ति, मुद्रांकित पशुपति एवं वृषभ आदि की कुछ ऐसी उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं जिनका निर्माता होना किसी भी काल के कलाकार के लिए आदर्श एवं गौरव की बात है। निसंदेह परवर्ती धर्म और भारतीय लिपि की भांति कला की परंपरा का मूल उद्गम सिंधु सभ्यता में ही मानना अभिष्ट होगा। स्टेला क्रमरिश ने उचित ही सुझाया है कि जिस भारतीय मूर्तिकला ने युगों युगों में अपनी अक्षुण्य परंपरा को प्रतिष्ठित किया है उसका स्रोत सिंधु घाटी की कला से ही प्रभावित हुआ था। राजनैतिक संगठन। सैंधव नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। इस संबंध में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का शासन सुदृढ़ दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्वार कराते थे। श्रम मूल्य भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में प्रायः रक्षकों की भी व्यवस्था थी। शासन में धर्म तत्व की ही प्रधानता थी। सैंधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद भी इसमें जो एक रूपता दिखाई देती है उससे ऐसा लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी भाग के शासन केंद्र थे। स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगन में थी। मेसोपोटामिया के सार्गोन युगीन शासकों के समान सैंधव नरेशों ने भी संपूर्ण सिंध प्रदेश को एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर लिया था। संभव है वे विशाल उपाधियां भी धारण करते हों, किंतु सैंधव शासक युद्ध प्रिय नहीं थे तथा विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी रुचि नहीं थी। इसकी अपेक्षा वे व्यापार वाणिज्य में रुचि लेते थे। इसी कारण कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस समय का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। बीबी लाल का अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। जैसा कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थिति में दिखाई देता है। इस प्रकार सैंधव काल की राजनैतिक व्यवस्था के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं है।